लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवांग पर संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत युवांग और विश्व के सारी कलीसिया के नाम संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु क्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुन रहे हैं। हमने इस प्रेरितिक संबोधन के पांचवें अध्याय की शुरुआत की है, जो युवाओं की राह के बारे में जिक्र करता है। पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में हमने कहा कि कुछ युवागण अपने को बच्चों की तरह बनाए रखना चाहते या अनिश्चित काल तक अपने किशोरावस्था में ही बने रहना चाहते हैं, जिससे वे निर्णयों के संबंध में अपने को दूर रख सकें। निश्चितता का भय उन्हें निर्णय लेने के संबंध में एक तरह से पंगु बना देता है। फिर भी हम युवाओं को रोक कर नहीं रख सकते हैं। यह चुनाव करने की आयु होती है जो उन्हें मोहित करती और वे अपने में बड़े उत्तरदायित्व का एहसास करते हैं। युवा अपने में व्यावसायिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र के अलावे और भी कई स्तरों पर अपने निर्णय लेते हैं, जो उनके जीवन को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। वे अपने प्रेम के संबंध में निर्णय लेते, अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करते और परिवार की शुरुआत करते हैं। अपने जीवन की इन सारी आशाओं और सपने जो उन्हें निर्णय लेने में मदद करती हैं, वहीं हम उन्हें शिकायत करने की परीक्षा में पड़ा देखते, जो उन्हें निराश करती या वे अपने प्रयास का परित्याग कर देते हैं। वे अपने जीवन में शिकायतों की देवी की पूजा करते हैं, जो अपने में एक झूठी देवी है जो उन्हें गलत मार्ग में ले चलती है। जब हम अपने जीवन में चीजों को स्थिर और रुका हुआ पाते, जब हमारी व्यक्तिगत जीवन की मुसीबतें हमारे लिए तकलीफ दायक होती हैं और जब सामाजिक समस्याओं का समाधान हमें अपने में सही और उचित रूप में नहीं मिलता, तो ऐसी परिस्थिति में अपने जीवन से हताश और निराश हो जाना हमारे लिए उचित नहीं है। संत पापा कहते हैं कि यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन की राह हैं, अतः उन्हें अपने जीवन की नाव में निमंत्रण दें और गहरे पानी में निकल पड़ें। वे ईश्वर हैं, वे हमारे जीवन की चीजों को, हमारे जीवन जीने के नजरिए को परिवर्तित करते हैं। अपने खास गुणों और कार्य कुशलता की अपेक्षा यीशु ख्रिस्त में हमारा विश्वास उनके शब्दों की पुकार जो हमें निमंत्रण देती है, हमें वृहद आशा से भर देती है। आप मानवीय सोच के आधार पर अत्यधिक माप तौल किए बिना और उन बातों से विचलित हुए बिना जो आपके जीवन को सुरक्षा प्रदान करने वाली चीजों को चुनौती देती हैं, अपने जीवन को गहरे पानी में ले जाएं। आप अपने आप से बाहर निकलें, उन चीजों से बाहर निकलें जो आपको सुरक्षा की अनुभूति प्रदान करती है। संत पापा युवाओं से कहते हैं कि आप अपने जीवन की आशाओं और सपनों का अनुसरण करें, लेकिन आप अपने जीवन में आने वाली एक परीक्षा से अपने को सतर्क रखें जो आपको पीछे की ओर खींच सकती है। यह आपके लिए चिंता है। चिंता हमारे विरुद्ध प्रभावकारी होती है, जहां हम अपने जीवन में आशा के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति तुरंत नहीं होने पर बाकी अन्य सारी चीजों का परित्याग करने की परीक्षा में पड़ जाते हैं। हम अपने जीवन के सर्वोत्तम सपनों की प्राप्ति अपनी आशा, धैर्य और निष्ठा में बने रहते हुए प्राप्त करते हैं, न कि अपनी हड़बड़ी में। वहीं हम अपने में संकोची ना हो, हम प्रयास करें और इसके फलस्वरूप होने वाली गलतियों से भयभीत ना हो। सजीव रहने पर भी पंगु व्यक्ति की माफिक हम अपने जीवन को ना जिए, क्योंकि यह भय है जो हमें अपने जीवन में जोखिम उठाने से भयभीत कर देता है। जहां हम गलतियों के डर से अपने जीवन में कोशिश करने के बदले पीछे हट जाते हैं, यदि गलतियां हो भी जाएं, तो भी आप अपने जीवन को सदैव नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन की आशा को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। संत पापा फ्रांसिस युवाओं से आह्वान करते हुए कहते हैं कि आप अपने युवा काल के वर्षों का भरपूर लाभ उठाएं। आप अपने जीवन को दूर झरोखे से खड़ा होकर ना देखें। आप खुशी को आरामदेह कुर्सी के रूप में देखने की गलती ना करें, या अपने जीवन को पर्दे के पीछे जीने की द्विधा में ना रहें। आप अपने जीवन में जो भी करते हों, उसके लिए अपने आप में विलाप ना करें। आप अपने जीवन की गाड़ियों, अपनी कारों को गैराज में ना डालें, अपितु आप खुले रूप में सपने देखें और उनके आधार पर सही निर्णयों को लें। आप अपने जीवन में जोखिम उठाएं, चाहे उस जोखिम में गलतियां ही क्यों ना हों। आप अपने जीवन को अचेतना की अवस्था में ना जिए, या दुनिया में तीर्थ यात्रियों की तरह ही। आप अपने जीवन में हंगामा करें, अपने जीवन की सारी डरों को अपने से निकाल फेंकें जो आपको पंगु बना देती हैं, जिससे आप अपने में युवा पुराशव ना बने। आप अपना जीवन जिए, अपने जीवन को सर्वोत्तम रूप में जीने का प्रयास करें। आप अपने जीवन में कैद खानों की दरवाजों को खोलें, बाहर निकलें और उड़ान भरें। कृपया आप अपने जीवन में अतिशीघ्र सेवा निर्वित ना हों। भविष्य की उम्मीदों और प्रतिज्ञाओं की ओर बढ़ते हुए युवा अपने में वर्तमान स्थिति का भी ठोस रूप में अनुभव करने की चाह रखते हैं। वे उन सारे अवसर का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं जो जीवन उनके लिए लेकर आती है। हमारी दुनिया सुंदरता से भरी हुई है, हम कैसे ईश्वर के द्वारा गढ़ी गई सुंदर कृतियों को अपने लिए देख सकते हैं। लोगों की सोच के विपरीत ईश्वर हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं की पूर्ति के संबंध में कोई दबाव नहीं डालते हैं। इस संबंध में हम पुराने विधान की बातों पर चिंतन करें, जहां प्रवक्ता ग्रंथ हमें कहता है, पुत्र अपने धन का उपभोग करो और प्रभु को उचित बलिदान चढ़ाओ। याद रखो कि मृत्यु के आने में देर नहीं है और तुम अधोलोक का निर्णय नहीं जानते हो। मरने के पहले अपने मित्र की भलाई करो और जहाँ तक बन पड़े उसे उदार दान दो। वर्तमान की अच्छी चीजों से अपने को वंचित मत रखो और सुख का अपना भाग हाथ से न जाने दो। सच्चे ईश्वर जो हमें प्रेम करते हैं, हमें अपने जीवन में खुश देखना चाहते हैं। यही कारण है कि धर्म ग्रंथ बाइबल युवाओं के संबंध में उपदेशक ग्रंथ से यह सलाह प्रस्तुत करता है, युवा अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आँखों की अभिलाषा पूरी करो, अपने हृदय से शोक निकाल दो। वहीं चेतावनी स्वरूप हमें यह भी कहा जाता है कि इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में हमें प्रदान करते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुनी। हम इसकी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे।
आवाज करो, गाओ खुशी के। याद रखो के वही एक खुदा है। चारागाह से हम सब है आए,
हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस विश्व भर के मरियम तीर्थस्थलों के साथ रोजरी प्रार्थना करेंगे। वे यह प्रार्थना शनिवार 30 मई को शाम 5:30 बजे वैटिकन वाटिका स्थित लूर्द के ग्रोटो से करेंगे। उस दिन की प्रार्थना की विषय वस्तु है ईसा की माता मरियम के साथ प्रार्थना में एक हृदय, जिसमें संत पापा फ्रांसिस स्वास्थ्य संकट के कारण उत्पन्न बाधाओं के मद्देनजर विश्व भर के मरियम तीर्थस्थलों से जुड़कर रोजरी प्रार्थना का संचालन करेंगे। नवीन सुसमाचार प्रचार हेतु गठित परम दंपीठ समिति ने 26 मई को एक विज्ञप्ति जारी कर इस बात की घोषणा की कि महामारी के समय में माता मरियम की सहायता की याचना और मानव जाति को प्रभु को समर्पित करते हुए संत पापा फ्रांसिस 30 मई को शाम 5:30 बजे वैटिकन की वाटिका स्थित लूर्द की माता मरियम के ग्रोटो से रोजरी की प्रार्थना करेंगे। इस पहल को बढ़ावा देने हेतु नवीन सुसमाचार प्रचार के लिए गठित परम दंपीठ समिति ने उन परिवारों एवं लोगों को रोजरी भेंट की है जो कोरोना वायरस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रोजरी मुख्य रूप से डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त मरीज, अपने प्रियजनों को खोने वालों, अस्पताल में सेवारत पुरोहितों, दवाखाना के कर्मचारियों, पत्रकारों, नागरिक सुरक्षा सेवा के स्वयंसेवकों एवं उनके परिवारों को प्रदान किया गया है। प्रार्थना में वे सभी आशा व्यक्त करने के लिए उपस्थित होंगे। समिति ने लिखा कि यह मरियम की भक्ति के महीने का अंतिम समय है। संत पापा फ्रांसिस पूर्ण भरोसे के साथ सारी मानव जाति के दुखों को स्वर्गीय माता के चरणों में समर्पित करेंगे। प्रार्थना में 5 महादेशों के तीर्थस्थल ऑनलाइन जुड़े होंगे। वे तीर्थस्थल हैं लूर्द, फातिमा, लुजान, मिलाग्रो, ग्वादालूपे, सैन जुआनी रोतोंडो और पोम्पे। नवीन सुसमाचार प्रचार के लिए गठित समिति के अध्यक्ष महादमद श्रीनोफिसी केल्ला ने एक पत्र भेजकर तीर्थस्थलों को निमंत्रण दिया है कि इस प्रार्थना के विशेष अवसर का आयोजन वर्तमान के स्वास्थ्य संकट की आवश्यकताओं के अनुसार नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाए और लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। लौदातो सी वर्ष की घोषणा के साथ समग्र मानव विकास हेतु गठित परम धम्मपीठ परिषद के सचिव ने कैथलिकों से अपील की है कि वे सृष्टि के वार्षिक सत्र में भाग लें। सृष्टि के सत्र की अवधि है 1 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। इसकी शुरुआत 1 सितंबर को सृष्टि के लिए विश्व प्रार्थना दिवस के साथ होगी तथा इसका समापन 1 अक्टूबर को संत फ्रांसिस असीसी के पर्व के दिन होगा। सभी ख्रिस्ती समुदायों को निमंत्रण दिया गया है कि वे प्रार्थना सभाओं का आयोजन दलों में कचरों को साफ करने या हिमायती कार्य करने के द्वारा इसमें भाग लें। समग्र मानव विकास के लिए गठित परम धम पीठ परिषद के सचिव मॉन्सिनियर ब्रूनो ने इस सत्र के लिए एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि सृष्टि के सत्र के लिए संत पापा फ्रांसिस के साल 2019 का संदेश विशेष रूप से प्रासंगिक है जब विश्व कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, जब दुनिया वैश्विक आपातकाल के बीच एक गहरी अनिश्चितता महसूस कर रही है, हम यह पहचानने के लिए बुलाए गए हैं कि वास्तव में स्वास्थ्य सुधार का मतलब है यह देखना कि सब कुछ जुड़ा हुआ है तथा उन रिश्तों को चंगा करना जो टूट गए हैं। कलीसिया के इस पारिस्थितिक प्रयास को संत पापा फ्रांसिस के प्रेरित प्रबोधन क्वेरिता अमाजोनिया से बल मिला है।
मॉन्सिनियर डुफिया ने कहा कि कार्तिक विश्वासी ऐसी योजनाएं बनाना शुरू करें जो कलीसिया को एवं समस्त पर्यावरण को नए रास्ते पर चलने में मदद देगा, साथ ही समुदायों को विशेष ख्रिस्त त्याग अर्पित करने तथा तीर्थ यात्रा करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है। कलीसिया के धर्म गुरुओं से आग्रह किया जाता है कि वे विश्वासियों के बीच सतत अभ्यासों एवं हिमायती प्रयासों के प्रति जागरूकता लाएं। उन्होंने कहा, यह सत्र हमें पृथ्वी और इसके साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंध के नवीनीकरण के लिए एक साथ कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। उधर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने भारत के पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्यों और बांग्लादेश में गत बुधवार को आए भयंकर अम्फन चक्रवात से हुए जान माल की क्षति पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस प्राकृतिक आपदा ने भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों में कोविड-19 से संघर्ष में शारीरिक दूरी बनाकर रखना मुश्किल कर दिया है। शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस के प्रवक्ता स्टेफन डुजारिक ने बतलाया कि भारत और बांग्लादेश में चक्रवात अम्फन के कारण मौत और विनाश के परिणामों से महासचिव अत्यंत दुखी हैं। वे उन लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है तथा वे घायल एवं आपदा के शिकार लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। अम्फन तूफान के पूर्व दोनों देशों के करीब 3 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों में भेज दिया गया था जिससे कि उन्हें भूस्खलन के खतरे से बचाया जा सके। पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों के अनुसार चक्रवात ने 7 जिलों में बुनियादी ढांचों और फसलों को $13 बिलियन का नुकसान पहुँचाया है। दोनों देशों ने चक्रवात में कुल 102 लोगों को खोया है जिनमें से अधिकांश लोगों की मौत घर के ध्वस्त होने अथवा बिजली के करंट लगने से हुई है। पश्चिम बंगाल के सरकारी अधिकारियों के अनुसार चक्रवात ने करीब 13 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है जिनमें से अधिकतर लोगों ने अपना घर, फसल और जमीन खो दी है। पश्चिम बंगाल के बारोपुर धम प्रांत के समाज सेवा विभाग के निदेशक फादर परिमल कांजी ने कहा, यह केवल शुरुआती आकलन है, क्षति इससे भी अधिक हो सकती है। फादर ने कहा कि हमारे लोगों ने सब कुछ खो दिया है। चक्रवात ने 24 पल्लियों के लोगों के घर, फसल और जीविका को नष्ट कर दिया है। यहाँ तक कि गिरजाघर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये पल्लीवासी गरीब हैं। उनकी जीविका मुख्यतः मछली पालन, खेती बाड़ी, मधुमक्खी पालन और जंगल से प्राप्त अन्य संसाधनों से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि चक्रवात ने राज्य के 9 जिलों में 13 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है। फादर कांजी ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वे प्रभावित लोगों को सामान्य जीवन में लौटने हेतु उदारता पूर्वक मदद करें। भारत की कार्तिक कलीसिया अपनी कार्तिक राहत सेवा और कारितास इंडिया के द्वारा स्थानीय धर्म प्रांतों में चक्रवात पीड़ितों की मदद करना शुरू कर चुकी है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।